نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قرآنی صورتوں کا نظم جلی. اس سلسلے میں آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الانعام کو دیکھیں گے. تفسیر ہو چکی, غور و فکر بھی ہم بہت دفعہ کر چکے, تدبر بھی ہو چکا. اس وقت یہ سلسلہ جو ہم صورتوں کا شروع کرتے ہیں یا جس انداز سے اس وقت کر رہے ہیں, یہ اصل میں اس کو فائدہ دیتا ہے جو حل میں مزید اور بھی کچھ ہے اس پہ عمل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا اور اس میں سے ایک علم کا بھوک ہے. اگر آپ کے دل میں علم کی بھوک لگ چکی ہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کبھی اپنے آپ کو فارغ البال نہیں سمجھیں گے کہ آپ میں ساری ڈگریاں لے چکی ہوں اور میں فارغ ہو چکی ہوں. تو اگر آپ اس سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خیر اور عافیت کے دروازے کھلیں گے. تو چلتے ہیں سورۃ الانعام پہ. ترتیب کے اعتبار سے چھٹے نمبر کی سورت ہے. اس سے پہلے چار طویل صورتیں گزر چکی اور ایک اہم صورت. طویل صورتیں البقرہ, آل عمران, سورۃ نساء اور مائدہ, اور اہم ترین صورت الفاتحہ تھی. سورۃ الانعام قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے چھٹے نمبر کی صورت ہے, لیکن نزول اس کا فرق ہے. انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. بھی مکی صورت ہے. 165 یعنی 165 آیتیں ہیں اس میں. اس پوری صورت کے سات بڑے مضمون ہیں, یعنی جس طرح آپ کہہ لیں کہ اگر اس کو پیراگرافس میں بدلا جائے تو سات پیراگراف بنتے ہیں. کیسے ہیں؟ آئیے ذرا فلو چارٹ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیسے. نمبر ایک, آیت سے 73 یعنی پہلی 73 آیتیں مشرکین مکہ سے مناظرے اور مجادلے کی ہیں. اور اس ٹاپک سے ہی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس وقت کفر اور اسلام کی آپس میں کیا چپکلش چل رہی تھی. مکہ کا دور ہے, اللہ کا نبی کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اور لوگوں کی زندگیاں تو پتہ نہیں 313 بتوں کو پوچھتے اور اس سے بھی زیادہ کو گزرتی تھی. حقیقت ہے کہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم اپنی ایک پسندیدہ طریقے کی جنت اور اپنی خواہشوں کی جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں, اتنے میں قرآن آپ کے ہاتھ میں کھلتا ہے. آپ کو تو کوئی اور ہی دنیا کا رستہ دکھتا ہے. آپ کہتے ہیں اوہو یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا. تو جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر واقعی معاشرے کے ساتھ ایک جنگ کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ جو حالات ہیں اسے اپنے آپ کو انسان نے گزارنا ہے اور اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے. جیسے ایک سسٹر کی بات یاد آ گئی کہ کورس کرنا چاہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کسی نے کہا لو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جانے لگی ہیں. میں نے کہا آپ کو یہ بات آپ کے کسی پیارے نے کہی ہوگی, بے تکلف دوستوں سے بڑھ کر یہ بات کوئی نہیں کہتا. آپ اس کی اس بات کو جوتی کی نوک پہ رکھیں, اللہ آپ کو کبھی نہیں یہ کہے گا. لیکن حقیقت ہے کہ جب ہم معاشرے سے نکل کر اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں نا, تو لوگ ہمیں اس طرح کی پچھلی زندگی کے طعنے دیتے ہیں. تو ایسے حالات میں ایک بندے کو کوئی دے تو وہ تو ایک ہے نا. اللہ کے نبی جس دور میں معاشرے میں جی رہے تھے تو وہاں ہر طرف یہی کیفیات تھی, مناظرے, مجادلے, بحثیں, مباحثے, کب مریں گے, کیسے ہوگا, میں یحیی الازام ابہی رمیم, کون ہے ان گلی ہڈیوں کو زندہ کرے گا. کبھی کہا کے کہتے یا سلون کان ساتھ یا نہ مرساہا فی مان تمن ذکراہا, یعنی اس طرح کا ہے. تو 73 آیتوں میں آپ کو صرف یہی بات ملے گی. پھر اس کے بعد اگلی 20 آیتیں یعنی 74 سے 94 آیتیں, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعوت توحید ہے. آپ کو شرح صدر ہو جاتا ہے کہ میرا تعلق اتنے پیارے گروہ سے ہے. دیکھیے آپ کوئی نیا کام کریں نا اور کوئی نہ کر رہا ہو تو آپ کو ڈاؤٹس رہتے ہیں, پتہ نہیں یہ ہمیں کروا رہے ہیں صحیح بھی ہیں کہ نہیں. لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ جو کام کرا رہے ہیں نا, یہ پیچھے سے مکہ یونیورسٹی یا ام القریٰ یونیورسٹی سے بھی یہی چیز جڑتی ہے یا ان کی افیلیشن مکہ یونیورسٹی سے ہے, تو آپ کے دل میں یقین ہوگا نا کہ پھر یہ ہمیں نہیں بہکا رہے, نور القرآن والے غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے. مثال دے رہی ہوں. بالکل اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ والوں کے لیے ایک بڑی عجیب دعوت تھی, ایک نئی بات تھی. اور سورۃ سواد کے شروع میں تو انہوں نے یہ شبہ جو کہا تھا اللہ نے نقل بھی کر دیا کہ کیا تو سارے الہوں کو ملا کر ایک الہ بنا رہا ہے, بات بڑی عجیب ہے. یہ باتیں کہتے تھے. लेकिन अल्लाह ने नबी सल्लम की इस दावत को अम्बिया कराम के सिलसिले से गुज़रते गुज़रते इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो जोड़ा, तो इससे अहले तौहीद के दिलों में जमाव आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहम्मद सल्लम को नई बात नहीं कर रहे, ये बात पीछे से भी कही जाती रही। ठीक है, 20 आयात इस पे है। फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक इस सूरत का आयत 95 से 113 है। आप देखें तो 18 आयतें बनती हैं तकरीबन, 18 आयतें हैं। दावते तौहीद और तरदीद शिरक। मैंने शुरू में बता दिया आपको कि सूरत अल अनाम ख़ास तौर पे और अगली सूरत अल अराफ ये शिरक का रद्द है। बल्कि मैं सिर्फ आपका शौक़ उभारने के लिए कहूँ कि एक सिस्टर हैं जो अभी मुस्लिम नहीं हुई, अल्लाह उनकी ज़ुबान पे कलमा ले आए और जो दिल में उनके क्वेश्चंस हैं अल्लाह उनको दूर कर दे, तो उन्होंने भी बड़े तपाक से कहा कि मैं कुरान सुनती हूँ आपका, ना सूरत मायदा तक सुना, सूरह आल इमरान शुरू शुरू की उसके बाद छोड़ दिया। अब कहने वाला कोई भी उसकी वजह बना लेगा, लेकिन मैंने उनको कहा कि जो मुझे इस बात समझ आ रही है, सूरत अल अनाम उनके अकायद पे बराहे रास्त चोट है, ये सुनने ही नहीं दे रहा शैतान उनको, क्योंकि ये वो सूरतें हैं कि इसकी एक एक आयत के साथ फरिश्ते उतरे थे और इसमें वाकई शिर्क का रद्द है। तो तकरीबन 18 आयतों में आपको तौहीद की दावत और शिर्क का रद्द दिखेगा। फिर उसके बाद आयत 114 से 121, यानी तकरीबन 5 आयतें हैं, ये भी शिर्क फित तशरी की तरदीद। शिर्क फित तशरी क्या है? पिछली सूरत में बात इस पे बहुत दफ़ा हुई है, शरीयत साजी, शाबाश, यानी जिसको तहकीम भी कह सकते हैं, हुक्म साजी का और हुकूमत साजी का हक सिर्फ अल्लाह ताला को है। ठीक है, तो ये इसमें एक किस्म का आप कह लें कि हुक्मरान तबके पे या बड़े बड़े जो ग्रो और गैंग्स हैं जो इस्लाम से एंटी किस्म के कवानीन बनाते हैं, उनके ऊपर बात होगी। फिर पांचवा टॉपिक है आयत 122 से 135, तकरीबन 11 आयतें बनती हैं। मुजरिम और मगरूर की आदत का मकरो फरेब। पिछले हिस्से में कौन थे? ऐसे कायदीन जो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ शरीयत साजी करते हैं। अब यहाँ उनका मकरो फरेब और उस पर मज़ीद बात होगी कि ऐसे लीडर जब गलत काम करें तो उनके साथ हमारा मामला क्या होगा। फिर छठा टॉपिक है 155 से 165, तकरीबन 10 आयात हैं। बिदात किसकी? कुरैश की, मुसलमानों की बिदात तो आज हम जानते हैं, लेकिन कुरैश में क्या बुरी आदत थी उसका तذکرہ है। और तौहीद तशरी की वजाहत, यानी कुरैश ने दीन में क्या इजाफे किए थे, इसमें आप वो सारे पढ़ते हैं जो ये तुम खा सकते हो, वो नहीं खा सकता, इस मादा का बच्चा ये और फलां और फलां, आपको याद आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो तौहीद तशरी क्या होती है इसकी भी मजीद वजाहत, यानी शरीयत साजी का हक अल्लाह को है। दूसरे लफ्ज़ों में कह ले कि ना हम हलाल को हराम कर सकते हैं और ना हराम को हलाल कर सकते हैं। और फिर आखिरी टॉपिक सूरत का 155 से 165, तकरीबन 10 आयतों पे मुहित है, और इसमें है खुलासा दावते तौहीद और रद्दे शिर्क। पूरी सूरत का मरकज़ी मजमून फिर क्या बनता है? बनी इस्माइल में मिल्लत इब्राहिमी और अकीदा तौहीद के वारिस होना, यानी बनी इस्माइल ही असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सच्चे वारिस हैं और तौहीद पे यही लोग हैं। फिर इसी तरह कुरैश जो मुशरिकीने मक्का नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूरी बात देखे तो बनी इस्माइल या मिल्लत इब्राहिमी के सच्चे वारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुरैश मक्का नहीं है। क्योंकि निस्बतों से बात नहीं होती, आप फलां की बेटी, फलां की उस्ताद, फलां की शागिर्द कहती रहे, लेकिन आपके अकायद नहीं मिलते, आपका लाइफस्टाइल नहीं मिलता, आपका सोचने का अंदाज़ नहीं मिलता, तो वो इनकार कर देंगे इस बात का कि आप कौन से कोई ताल्लुक है। इसी तरह से बनी इस्माइल मुशरिकीने मक्का से मुबाइसा और मुजादला करते हुए शिर्क की मुख्तलिफ किस्मों पर तनकीद के बाद तौहीद की किस्में और तौहीद के तकाजे भी हैं। पूरी सूरत का बुनियादी मजमून तौहीद है, सीधी सी बात है। ये वो सूरत है कि जिसको अगर एक दफ़ा बगैर किसी तरद्दुद के सुन लिया जाए ना, यकीन करें दिल के अंदर से कई गिरें खुल जाती हैं। आज भी अगर आपके इर्द गिर्द रहने वालों में कोई इस तरह का है नॉन मुस्लिम, या वो इंक्लाइंड है, या वो चाहता है, मतलब आप उसको कुछ बताएं, सिर्फ सूरत अल अनाम का तर्जुमा, लंबी बातें ना करें, आप देखेंगे कि आपकी कोशिशों से इंशाल्लाह पूरे शरह सदर के साथ वो इस सूरत का तर्जुमा सुन जाएंगे ना, तो दिल से शिर्क निकल जाएगा और अल्लाह ताला दिल से निकाल दे। चलिए अब थोड़ा सा इस सूरत का ज़माना है नज़ूल देख लेते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियामे मक्का के आखिरी दौर में ऐन हिजरत से पहले गालिबन 1390 में सूरत अल अनाम और सूरत अल अराफ नाजिल हुई। जिस तरह ये कुरान में जुड़ी हुई है ना, करीन कहते हैं कुराना, एक साथ, इस तरह नज़ूल में भी ये एक साथ है। इस सूरत में 13 साल की दावत का खुलासा आखिरी अल्टीमेटम के साथ आ गया। इसको थोड़ा समझें, जैसे शुरू में भी आपको बताया गया कि इसमें बड़ी वाजे बातें की गई है ना, शिर्क को खोल के रख दिया। लेकिन ये कब हुआ? 13 साल गुजर गए थे। पहले दिन जाकर किसी भी शख्स के ऊपर ऐसी तनकीद कर देना, ये इस्लाम की हिकमत से खिलाफ है। किसी जगह बात हुई क्लासेस में, कोई भी क्लास थी तो उन्होंने कहा कि कोई टीचर आई, अच्छी टीचर थी, लेकिन क्लास से जाने के बाद जब वो गई तो स्टूडेंट्स ने या जो भी मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन आकर ये कह दिया कि आप अगर कुरान ठीक नहीं पढ़े तो ये गुनाह कबीर है, तो आप गलत कर रहे हैं। बात उनकी ठीक है, काफ और काफ के फ़र्क, हा और खा के फ़र्क के, लेकिन पहले दिन उनको ये जुमला नहीं था बोलना चाहिए। अब इस एक बात में जिन्होंने फैसला लिया वो गलत लिए कि सही लिए, उसको छोड़ दें हमारी बला से। लेकिन अपने लिए सीखिए, नए लोगों में जाकर पहले ही दिन क्रिटिकल बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने पहले दिन जाकर लोगों के शिर्क को नहीं खोला, बल्कि खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का, पहले उनको तौहीद सिखाई, इलाह का मफहूम बताया। तो याद रखिए, ज़िंदगी में ये असूल बना लें। हम भी कभी कभी बड़े रिजिड होकर बड़े दीन के जज्बे में चूर हुए, ये भी गलत, ये भी हराम, ये बिल्कुल गलत, मैं हदीस दिखा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये अंदाज़ निकाल दें। आपको क्या पता कि जो बंदा आया वो कहाँ से चोटें खाता आ रहा है, उसका इल्म ही नहीं है। हमेशा तनकीद से पहले तारीफ करें, ठीक है? फिर इसी तरह इस सूरत की आयत 33 में अबू जाहल के इस कॉल पर कहते हैं कि शायद नाजिल हुई, मुशरिकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नहीं जुटलाते बल्कि इन्हें कुरान की आयात से इनकार है। ये तिरमिज़ी की रिवायत किताबो तफसीर की इन्होंने लिखी है, हदीस का नंबर भी है, ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन मुराद ये है कि ये सूरत जो है हकीकत में शिर्क का रद्द है। और यहाँ तक आता है कि ये पूरी सूरत एक स्ट्रेच में नाजिल हुई थी, मुकम्मल इकट्ठी सूरत नाजिल होने वाली सूरतों में से एक सूरत है। याद आ रहा है आप में से किसी को इसके बारे में, जब ये नाजिल हुई थी तो क्या हुआ था? जी जी यानी इसको जब आप पढ़ रहे थे तो एक सहाबिया जो एक आपकी ऊँटनी चला रही थी तो वो कह रही थी कि आपके वजन से ऊँटनी की टांगे हिलने लग गई थी। तो अब आप देखिए कि इसमें कोई ना कोई ख़ास तो बात होगी ना, इसके अंदर कोई बात है, जो भी बात है, और तौहीद से भरी हुई सूरत है, और क्या चाहिए। इस सूरत के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी मार्फत और शिर्क की कबाहत बताई है, तो हकीकत में फिर ये फरिश्तों के जलब में नाजिल हुई हुई सूरतों में से एक सूरत है। और इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये पूरी मक्का में बयक वक्त नाजिल हुई थी, और हज़रत असमा बिनते यजीद थी वो सहाबिया जो हज़रत माज बिन जबल की चचाजद बहन थी, कहती हैं कि जब आपके ऊपर ये सूरत नाजिल हो रही थी तो आप ऊँटनी पर सवार थे, मैं उसकी नुकेल पकड़े हुए थी और बोझ के मारे ऊँटनी का ये हाल हो रहा था कि मालूम होता था इसकी ये हड्डियाँ टूट जाएंगी। और यहाँ तक आता है कि जिस रात ये सूरत नाजिल हुई आपने उसी रात इसको लिखवा दिया, कलम बंद करवा दिया, यानी इसको रिटर्न फॉर्म में रखा था, ठीक है? और मक्की दौर की आखिरी सूरत थी, इसलिए कि आखिरी वार थी, जैसे कहते हैं ना कि आखिरी कील लगाए जा रहे थे। अब मक्का छोड़ना तो था ही, इससे ये भी पता चलता है कि जिस जगह को इंसान ने छोड़ना हो फिर उनको खुल खुल के आखिर में उनकी सारी खराबियां बता देनी चाहिए, ताकि बाद में अगर हो सकता है आपके सामने नहीं लेकिन आपके बाद वो इस काम को लेकर चल सकते हैं, ठीक है? और ये भी ज़हन में रखिए कि 12 साल गुजर चुके थे अल्लाह के नबी को दावत देते हुए और कुरैश की मुज़ाहमत बर्दाश्त करते हुए और उनके सितम और उनके टॉर्चर्स को बर्दाश्त करते हुए। और ये वो दौर था जब इस्लाम कबूल करने वालों की एक बड़ी तादाद इनके जुल्म व सितम से आजिज़ आकर मुल्क छोड़ चुकी थी और हबशा में जा चुकी थी। और एक और बात नोट करें कि यह सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब नबी सल्लम की हिमायत के लिए ना तो बाहर की दुनिया में अबू तालिब थे और ना घर की दुनिया में खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। आप सारे दुनियावी सहारों से महरूम हो चुके थे और तबलीग रिसालत का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे, इसको नहीं छोड़ा। ये बड़ी बात है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में दुख भी आए और सुख भी आए, बच्चियों की शादियां भी हुई, अपनी भी हुई, मौतें भी हुई, अपनों ने भी छोड़ा, लेकिन काम नहीं छूटा आपका। ये है कामयाब बंदे की निशानी। इस रास्ते में वही कामयाब है। ये नहीं कि कौन अच्छा कर रहा है, ये नहीं है कौन कर रहा है, करता जा रहा है, चाहे कभी अच्छा कर ले कभी बुरा कर ले, लेकिन नबी की सुन्नत ही यही है कि पूरी कौम इनकार पे तुली हुई है। और यहाँ नोट कीजिए कि इस दौर में मक्का से इर्द गिर्द के लोग बहुत मुस्लिम होने लगे, ये भी एक सुन्नत है। जब करीब से दावत नहीं कबूल की जाती ना, तो दूर से दावत की कबूलियत शुरू हो जाती है। और ये वो दौर था कि मदीना से हवाएं चलनी शुरू हो चुकी थी, और वही जब बैत अकबा उला और सानिया का दौर था कि बाहर से आपको बुलाने के लिए इशारे मौजूद थे। और ये भी याद रख लीजिए कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि दीन फैले। अगर अल्लाह के नबी मक्का से मदीना ना जाते और वो क्यों गए, हालात ही ऐसे बन गए या दूसरी तरफ डिमांड थी, तो फिर दीन कभी मक्का से बाहर ना जाता। और इस सूरत में एक और चीज़ नोट कर लीजिए, जाहिलियत के तवहमात की तरदीद है, वहम परस्ती, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ये होगा, उल्लू बोला तो ये होगा। इस सूरत में आपको इसकी भी इंशाल्लाह बहुत सारी गाइडलाइन मिलेगी। फिर इसी तरह इस सूरत में वो असूल और अख्लाक के बड़े बड़े पिलर्स जिन पर इस्लामी माशरे की तामीर होनी चाहिए, उसका भी जिक्र है। और इसी तरह नबी सल्लम और आपकी दावत के ख़िलाफ़ लोगों के जो इतराज़ात था उसका जवाब भी है। और इसमें आपको बहुत दूर तक चलते जाने के बाद भी सहाबा और मुसलमानों के दिलों में जो इस्तराब और दिल टूटना था उसके ऊपर तसल्ली वाली आयतें भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस सूरत का हक अदा कर सकें।